डॉक्टर डेविड टर्नर गॉस्पेल ऑफ जॉन 17:13 यूहन्ना 11:1-57 2024 डेविड टर्नर और टेड हिल्डेब्रांट। यह जॉन के सुसमाचार पर अपने शिक्षण में डॉक्टर डेविड टर्नर हैं। यह 17:13 है। यरूशलेम में तनावपूर्ण समय यीशु ने लाजर को उठाया। जॉन 11:1-57। नमस्ते, मैं डेविड टर्नर हूँ। जॉन अध्याय 11 पर हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। हम यरूशलेम में उनके मंत्रालय में यीशु का तब से अनुसरण कर रहे हैं जब से वह जॉन अध्याय 7 में सुक्कोट के पर्व के माध्यम से आए और फिर अध्याय 10 में पतझड़ में सुक्कोट के बीच थोड़े अंतराल के साथ आए। हनुक्का सर्दियों में समर्पण का पर्व। दुर्भाग्य से हमारे लिए और विशेष रूप से यीशु के लिए कोई भी बढ़ते तनाव, बढ़ते क्रोध और बढ़ते विवादों में शामिल होना पसंद नहीं करता है, लेकिन यही वह कथा है जिसका हम अनुसरण कर रहे हैं। इसलिए इस बिंदु पर जिस तरह से कहानी चल रही है उसका अनुसरण करना कोई सुखद अनुभव नहीं है, लेकिन यह वास्तविकता की एक खुराक है जिसे हम सभी को समझने और निगलने की जरूरत है जब हम यीशु की कहानी को देखते हैं, न कि केवल जॉन के सुसमाचार में लेकिन पर्यायवाची परंपरा में भी। तो जॉन अध्याय 11 में हम संभवतः जॉन में यीशु के सभी चमत्कारों में से सबसे आश्चर्यजनक चमत्कार लाजर के पुनरुत्थान पर आते हैं। इसलिए जैसा कि हमारी प्रथा रही है, हम केवल कथा का अनुसरण करना जारी रखेंगे और समग्र प्रवाह प्राप्त करेंगे और हम वापस आएंगे और कुछ विशिष्ट मामलों को देखेंगे जो कथा में ही उल्लेखनीय हैं। तो सबसे पहले कथा प्रवाहित होती है। जॉन 11 की कहानी वास्तव में जॉन अध्याय 10 के अंत में यह कहते हुए शुरू होती है कि यीशु यरूशलेम छोड़ चुके हैं और जॉर्डन के दूसरी ओर बेथनी में चले गए हैं। यह जॉर्डन के पूर्व में किसी स्थान का संदर्भ होगा। हम बिल्कुल निश्चित नहीं हैं कि कहां। इसकी पहचान 1040 में जॉर्डन के पार उस स्थान के रूप में की जाती है जहां यीशु बपतिस्मा देते थे, या क्षमा करें, जहां जॉन शुरुआती दिनों में बपतिस्मा देते थे। तो हमें 1042 में अध्याय 1 और श्लोक 28 में एक भ्रम है जहां यह कहा गया है कि यह सब जॉर्डन के दूसरी तरफ बेथनी में हुआ था जहां जॉन बपतिस्मा दे रहा था। यह एक अस्पष्ट साइट है और यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि यह कहां थी। एक क्षण में हमें इस बारे में और भी बहुत कुछ कहना होगा। कहानी के कथानक के प्रयोजन के लिए यह मूल रूप से बेथनी में यह छोटा सा अंतराल है, चाहे वह कहीं भी हो। कहानी के प्रयोजन के लिए यीशु ने तनावपूर्ण विवाद और विरोध को छोड़ दिया है और हम यह कहने की हिम्मत कर सकते हैं, लिंचिंग भीड़ जो जॉन 7-10 में उसके खिलाफ काम कर रही थी क्योंकि यह बुखार की चरम सीमा तक पहुंच गई थी, इसलिए वह शहर छोड़ देता है और ग्रामीण इलाकों में ऐसी जगह चला जाता है जहां यह अधिक शांत होता है। हमें अध्याय 10 के अंत में बताया गया है कि इस स्थान पर कई लोग उसके पास आए और उन्होंने कहा, हालांकि जॉन ने कभी कोई संकेत नहीं दिया, जॉन ने इस आदमी के बारे में जो कुछ भी कहा वह सच था। तो हमारे पास जॉन अध्याय 10 के सुसमाचार में बहुत गहराई तक जॉन द बैप्टिस्ट की एक दिलचस्प छोटी पुष्टि है। हमें नहीं लगता कि हमने जॉन के बारे में बहुत कुछ सुना है क्योंकि यीशु ने अध्याय 5 में उसका संक्षेप में उल्लेख किया है और चूंकि जॉन ने स्वयं अपना अंतिम बलिदान दिया था। जॉन अध्याय 3 के उत्तरार्ध में यीशु की गवाही। तो हमें एक बार फिर बताया गया है कि उस स्थान पर कई लोगों ने यीशु पर विश्वास किया था, हालांकि उनके विश्वास की प्रकृति अन्य ग्रंथों के कारण कुछ हद तक अस्पष्ट है जिन्हें हम पहले ही देख चुके हैं। तो फिर हम जॉन के सुसमाचार में ही आते हैं। इस बीच यरूशलेम क्षेत्र में यीशु इस छोटे से एकांतवास पर हैं, जैसे कि यह बेथानी में था, लेकिन यरूशलेम में बुरी चीजें हो रही हैं। हमें अध्याय 11 श्लोक 1 से 6 में बताया गया है कि यीशु को अपने मित्र लाजर की बीमारी के बारे में पता चलता है, जैसा कि हम पता लगाने जा रहे हैं। अगर हमें याद नहीं है कि वह बेथनी में रहने वाला एक व्यक्ति था जो स्पष्ट रूप से एक गांव था। यरूशलेम से जैतून पर्वत के दूसरी ओर बस कुछ ही मील की दूरी पर। तो यीशु को पता चला कि लाजर बीमार है, लेकिन वह तुरंत इसके बारे में कुछ भी करने नहीं गया। तो जिन बहनों ने यीशु का अभिषेक किया था उनमें से एक, कम से कम मैरी, वह है जिसने यीशु का इत्र से अभिषेक किया था और उसके पैरों को अपने बालों से पोंछा था। सो बहनों ने यीशु के पास कहला भेजा कि हे प्रभु, जिससे तू प्रेम रखता है वह रोगी है। इसलिए जब यीशु ने यह सुना तो वह कुछ रहस्यमय तरीके से बोला, यह बीमारी मृत्यु में समाप्त नहीं होगी, नहीं, यह परमेश्वर की महिमा के लिए है, ताकि इसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। इसे समझाने के लिए हमारे पास लेखक संपादक जॉन की ओर से पद 5 में एक कोष्ठक नोट है। यीशु मरियम और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था, इसलिए जब उसने सुना कि लाजर बीमार है तो जहां वह था 2 दिन और रुका। वे दोनों कथन एक साथ काम नहीं करते प्रतीत होते हैं, है ना? वह मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्यार करता था, इसलिए जब उसने लाजर को देखा तो उसने सुना कि लाजर बीमार है, वह 2 दिनों तक वहीं रुका रहा। तब उसने अपने चेलों से कहा, आओ यहूदिया को लौट चलें। जैसे ही यीशु ने यहूदिया वापस जाने का प्रस्ताव रखा और शिष्यों से कहा कि उन्हें वापस जाना चाहिए, वे तुरंत उससे कहते हैं, रब्बी गुरु, क्या आपको एहसास नहीं है कि वे कुछ समय पहले ही आपको वहां मार डालने वाले थे? श्लोक 8 में, फिर भी आप वापस जा रहे हैं? क्या आप निश्चित हैं कि हमें यह करना होगा? और यीशु ने कहा, क्या 12 नहीं है? यहाँ श्लोक 9 में फिर से थोड़ी गूढ़ भाषा है, क्या दिन के 12 घंटे नहीं हैं? जो कोई दिन के समय चले वह ठोकर न खाएगा, क्योंकि वह इस जगत की ज्योति से देखता है। जब कोई रात को चलता है तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसके पास प्रकाश नहीं है। तो ऐसा लगता है कि यीशु खुद को और अपने शिष्यों को ऐसे लोगों के रूप में वर्णित कर रहे हैं जिनके पास प्रकाश है, और भले ही वे खतरे में वापस जा रहे हैं, वे ठीक होने जा रहे हैं। वे रात के उन लोगों की तरह नहीं हैं जिनके पास रोशनी नहीं है, और इसलिए वे लड़खड़ा जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ अध्याय 11 की भाषा है, जो हमें प्रकाश और अंधकार के बारे में जॉन की संपूर्ण शिक्षा वहाँ के नैतिक द्वैतवाद की ओर वापस ले जाती है, जो जॉन अध्याय 1 प्रस्तावना और हाल ही में अध्याय 8 पद्य के साथ प्रदर्शित होती है। 12, मैं दुनिया की रोशनी हूँ, और शायद यीशु ने उस अंधे आदमी को ठीक किया जो अध्याय 9 में प्रकाश देखने में सक्षम था। इसलिए यह कहने के बाद वह उन्हें बताने और उन्हें समझाने के लिए आगे बढ़ा कि हमारा मित्र लाजर सो गया है, मैं उसे जगाने के लिए वहां जा रहा हूं। मृत्यु के बारे में व्यंजनात्मक ढंग से बोलना, लेकिन श्लोक 12 में शिष्यों द्वारा इसे गलत समझा गया। हे प्रभु, यदि वह सोता है तो वह बेहतर हो जाएगा। उन्होंने सोचा, आप जानते हैं यीशु उसके सचमुच सोए होने की बात कर रहे हैं। तब यीशु ने पद 14 में उन्हें स्पष्ट रूप से बताया कि लाजर मर चुका है। आपके लिए मुझे खुशी है कि मैं वहां नहीं था, ताकि आप विश्वास कर सकें। चलो उसके पास चलते हैं। तो यीशु अब मूल रूप से उन्हें बता रहा है कि वह कुछ ऐसा करने जा रहा है जो उल्लेखनीय होगा, और यह तथ्य कि लाजर पहले ही गुजर चुका है इसे और भी अधिक उल्लेखनीय बना देगा। इसके जवाब में थॉमस बाकी शिष्यों से कहते हैं, आओ हम भी चलें कि उनके साथ मर सकें। अब सबसे हालिया मौत जिसका उल्लेख किया गया है वह लाजर्स की है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि थॉमस यहां इसका जिक्र कर रहा है। मुझे लगता है कि थॉमस पद 16 में उसी बात का जिक्र कर रहे हैं जो शिष्यों ने पद 8 में यीशु से कहा था। कुछ समय पहले यहूदी आपको पत्थर मारने की कोशिश कर रहे थे और आप वापस जा रहे हैं। इसलिए जब थॉमस कहता है चलो चलें कि हम उसके साथ मर सकें, तो मुझे लगता है कि थॉमस सिर्फ यह स्वीकार कर रहा है कि यरूशलेम में खतरा होगा और वह और बाकी शिष्य वापस जाने पर मर सकते हैं। लेकिन अगर यीशु वहीं जा रहे हैं तो वे भी वहीं जाने वाले हैं। तो यह सब हमें पद 17 तक ले जाता है जहां यीशु अंततः यरूशलेम लौटता है और हमारे बीच कुछ बातचीत होती है जो उसके बाद शुरू होती है। सबसे पहले वह मार्था से मिलता है जिसे पता चलता है कि वह आ रहा है और उससे मिलने जाता है। और सबसे पहली बात जो मार्था पद 21 में यीशु से कहती है, यदि तुम यहां होते तो मेरा भाई नहीं मरता। यह उसकी ओर से विश्वास की एक दिलचस्प मात्रा को दर्शाता है, लेकिन शायद उसका विश्वास यह सोचने तक ही सीमित है कि अब जब वह मर गया है तो आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जब यीशु उससे कहते हैं पद 23 में तुम्हारा भाई फिर से उठेगा, मार्था कहती है मुझे पता है कि वह अंतिम दिन पुनरुत्थान में फिर से उठेगा। बेशक यह सब सच और तथ्यात्मक है और उसकी ओर से विश्वास दर्शाता है। पद 22 में उसने यीशु से यह भी कहा, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई न मरता, तो भी मैं जानती हूं कि अब भी तू जो कुछ मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। तो शायद वह निराशा में नहीं थी कि उसका भाई उससे खो गया था, लेकिन उसने स्वीकार किया कि लाजर वास्तव में मर गया था। जब यीशु कहते हैं तुम्हारा भाई फिर से जी उठेगा, तो वह इस विचार को नहीं समझती है कि शायद भले ही वह विश्वास करती है कि भगवान यीशु के कहे अनुसार कुछ भी करेंगे, यीशु भगवान से लाजर को तुरंत वापस लाने के लिए नहीं कहेंगे। तो किसी भी घटना में मार्था में यहाँ विश्वास और विश्वास की कमी का थोड़ा सा संयोजन है, शायद इसकी कमी से अधिक विश्वास है, लेकिन वह क्या सोचती है कि यीशु क्या करेगा, इसके बारे में उसकी समझ को देखना दिलचस्प है। इसलिए मार्था की टिप्पणी के जवाब में, जिसे हम भविष्य का युगांत शास्त्र कहेंगे, वह इसे आगे बढ़ाने के लिए अंतिम निर्णय और पुनरुत्थान में विश्वास करती है। इससे पहले यीशु श्लोक 25 में उत्तर देते हैं, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ, जो मुझ पर विश्वास करता है वह मर भी जाएगा तो भी जीवित रहेगा, और इससे भी दिलचस्प बात यह है कि जो मुझ पर विश्वास करके जीता है वह कभी नहीं मरेगा। फिर वह मार्था से कहता है क्या तुम इस पर विश्वास करती हो। इसके बाद मार्था श्लोक 27 में विश्वास की एक बहुत अच्छी स्वीकारोक्ति देती है, मेरा मानना है कि आप मसीहा हैं, ईश्वर के पुत्र हैं जो दुनिया में आने वाले हैं। वह उसमें पुनरुत्थान के बारे में कुछ विशेष नहीं कहती है, लेकिन वह लाजर में अपने विश्वास की पुष्टि करती है। तो इस आदान प्रदान के बाद मार्था वापस जाती है और मैरी को बुलाती है, और अब मैरी उसकी बहन पद 28 और उसके बाद यीशु से बात करने के लिए आती है। मार्था मैरी से कहती है, शिक्षक यहाँ है, वह तुम्हारे लिए पूछ रहा है। मैरी यह सुनती है, वह जल्दी से उठती है और उसके पास जाती है। फिर भी आयत 30 के अनुसार यीशु ने गांव में प्रवेश नहीं किया था, लेकिन लोगों ने सुना था कि वह आ रहा है और इसलिए वे उससे मिलने के लिए उत्सुक थे। इसलिए जैसे ही मैरी वहां से बाहर गई, जो लोग घर में थे उन्होंने सोचा कि वह शायद प्रार्थना करने रोने के लिए कब्र पर जा रही है, और इसलिए वे उसका पीछा करते हैं। इसलिए जब वह उस स्थान पर पहुंचती है जहां पद 32 के अनुसार यीशु थे, तो वह उनके चरणों में गिरती है और वही बात कहती है जो मार्था ने पद 21 में कही थी। इसलिए 32 फिर से दोहराते हुए कि प्रभु यदि आप यहां होते तो मेरी भाई नहीं मरता। तो यीशु और मरियम के बीच बातचीत इससे आगे नहीं बढ़ती। कथा में अब यीशु कब्र के पास बेथनी के पास हैं, और इसलिए चीजें थोड़ी और तेजी से आगे बढ़ने वाली हैं। इसलिए जब यीशु उसे रोते हुए देखता है और उसके साथ आए यहूदियों को भी रोते हुए देखता है, तो हमारे पास यहाँ एक दृश्य होता है जिसमें बहुत अधिक भावनाएं शामिल होती हैं, और मुझे लगता है कि हम पवित्र शास्त्र में और यहाँ तक कि आधुनिक पूर्वी संस्कृतियों में भी देखते हैं, प्राचीन का उल्लेख नहीं करते हैं। रोना पीटना बहुत सार्वजनिक मामला है। मुझे लगता है कि वर्तमान पश्चिमी दुनिया में हम अपने सबसे बड़े प्रियजनों की मृत्यु पर भी अपने रोने और शोक को दबा देते हैं, और हम सोचते हैं कि अंतिम संस्कार में भारी मात्रा में भावनाएं दिखाने के बारे में कुछ अशोभनीय है, भले ही हम गहराई से प्यार में हों उस व्यक्ति के साथ जो गुजर चुका है। प्राचीन काल में और यहाँ तक कि निकट पूर्व में आधुनिक समय में भी ऐसा नहीं था। तो यीशु आत्मा में गहराई से प्रेरित और परेशान हैं, आत्मा में गहराई से प्रेरित और परेशान हैं। तथाकथित आध्यात्मिक सुसमाचार में यीशु की मानवता का एक और उदाहरण, जहां कुछ विद्वानों ने कहा है कि यीशु के पैर वास्तव में कभी जमीन को नहीं छूते हैं। मुझे लगता है कि वे इस बारे में गलत हैं। लाजर की बहनों और उनके साथ के लोगों के दोहक से आत्मा बहुत प्रभावित हुई। यीशु कहते हैं, तुमने उसे कहाँ रखा है? तो वे कहते हैं, आओ और प्रभु को देखो, और उस समय यीशु स्वयं रोने लगते हैं। जॉन 11:35 को अक्सर बाइबल में सबसे छोटी कविता के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यहूदियों ने, पर्यवेक्षकों ने इस पर ध्यान दिया और ध्यान दिया कि यीशु लाजर से कितना प्यार करते थे। तो इस बिंदु पर सब कुछ बहुत गर्म, अस्पष्ट और भावनात्मक है, और इसलिए यह यीशु और इन लोगों के बीच महान प्रेम, सम्मान और अंतरंगता का एक रोने वाला दृश्य है जो उसके दोस्त थे। हालांकि सच्चे प्यार और शोक के उस खूबसूरत दृश्य के बीच हमारे पास श्लोक 37 में एक तरह का अविश्वास या एक भद्दी टिप्पणी की गई टिप्पणी है। उनमें से कुछ ने कहा, क्या वह नहीं कर सकता जिसने अंधे आदमी की आंखें खोली? क्या आपने इस आदमी को मरने से बचाया है? दूसरे शब्दों में, यदि वह इतना महान और इतना शक्तिशाली है, और यदि वास्तव में उसके दावे सच्चे हैं और वह मसीहा है, तो उसने अपने प्रिय मित्र को मरने की अनुमति क्यों दी? पिछली कहानी में वर्णनकर्ता की व्याख्यात्मक टिप्पणियों का लाभ उठाते हुए, हम में से जो लोग जॉन 11 पढ़ रहे हैं, वे जानते हैं कि यीशु ने जानबूझकर ऐसा होने दिया है, और उन्होंने इसके बारे में कुछ करने का अप्रत्यक्ष रूप से वादा किया है। तो अब हम श्लोक 37 की इस टिप्पणी से देख सकते हैं कि इन लोगों को कुछ हद तक राहत मिलने वाली है। श्लोक 38 हमें लाजर के वास्तविक पुनरुत्थान के बारे में बताता है। वह कब्र पर ही आता है, और हमें पद 38 में एक बार फिर याद दिलाया जाता है कि वह गहराई से प्रभावित हुआ है और कब्र पर आया है। यह एक गुफा थी जिसके प्रवेश द्वार पर एक पत्थर रखा हुआ था। उसने कहा, पत्थर हटाओ। बेशक प्राचीन समय में इस बिंदु पर बिना किसी लेप के और गर्म जलवायु में सड़न और उससे जुड़ी सुगंध कब्र में व्याप्त रही होगी। एक कारण यह है कि आप दरवाजे को पत्थर से ढक देते हैं। मार्था बोलती है और कहती है, हे प्रभु, इस समय तो दुर्गंध आने लगी है। वह वहां 4 दिन से है। यीशु ने पद 40 में मार्था को याद दिलाया, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि यदि तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा देखोगे? पद 23 में यीशु ने उससे कहा है, तेरा भाई फिर जी उठेगा। जो मुझ पर विश्वास करता है वह मर कर भी जीवित रहेगा। यहां तक कि जो मुझ में रहते हैं वे भी कभी नहीं मरेंगे। क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? तो यहां श्लोक 40 में यीशु मार्था को वह याद दिला रहे हैं जो उसने उससे पहले कहा था। इसलिए वे पत्थर ले गए, जैसा कि हमें श्लोक 41 में बताया गया है। मुझे नहीं लगता कि यह कोई सुखद अनुभव रहा होगा। मुझे लगता है कि लोगों ने कब्र से निकलने वाली दुर्गंध से मुंह मोड़ना शुरू कर दिया होगा। इस बिंदु पर यीशु प्रार्थना करते हैं, पिता मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरी बात सुनी है। मैं जानता हूँ कि आपने हमेशा मेरी बात सुनी है, लेकिन मैं यहाँ खड़े लोगों के लाभ के लिए यह कहता हूँ कि उन्हें विश्वास हो जाए कि आपने मुझे भेजा है। क्या यह आवर्ती विषय नहीं है जो शायद जॉन के लिए सबसे केंद्रीय है, जिसे हमने हर किसी के महान पसंदीदा श्लोक जॉन 3:16 के बाद से देखा है, और उससे पहले भी भगवान ने दुनिया से इतना प्यार किया जो उन्होंने दिया, पिता ने पुत्र को भेजा। समय समय पर यीशु अभी भी लोगों को यह एहसास दिलाने पर केंद्रित है कि पिता ने पुत्र को भेजा है। जब वह यह कह चुका तो यीशु ने ऊंचे स्वर से कहा, हे लाजर बाहर आ। और वह मरा हुआ मनुष्य हाथ पांव मलमल की पट्टियों से और मुंह पर कपड़ा लपेटे हुए बाहर आया। जीसस कहते हैं, कब्र के कपड़े उतारो, जाने दो, उसे बंधनों से मुक्त करो और उसे मुक्त होने दो। तो इस अद्भुत पाठ के साथ हम उस पर आते हैं जिसे अक्सर जॉन के सुसमाचार में सातवें और अंतिम संकेत के रूप में वर्णित किया गया है। यह निश्चित रूप से सुसमाचार का एक उच्च बिंदु है और स्वयं यीशु के पुनरुत्थान की आशा करता है। तो नाटक के इस उच्च बिंदु से, इस अद्भुत यीशु के सबसे आश्चर्यजनक चमत्कारों से अब हमारे पास उपसंहार आगामी संदर्भ है जो पद 45 में इससे निकलता है। पद 45 में हमें जो पहली बात बताई गई है वह यह है कि बहुत से यहूदी जो वहां आसपास थे वे यीशु पर विश्वास करते हैं, जैसा कि हम उम्मीद करते हैं। हालांकि श्लोक 46 श्लोक 37 के पिछले स्वर के समान लगता है। 37 को याद करें, लोग सोच रहे थे, अच्छा क्या जिसने अंधों की आंखें खोली वह ऐसा होने से नहीं रोक सकता था। और अब जबकि यीशु ने वास्तव में लाजर को वैसे ही जीवित कर दिया है जैसे उसने अध्याय 9 में अंधे व्यक्ति की आंखें खोली थीं, तो वह वास्तव में उससे भी आगे बढ़ गया और अध्याय 11 में मृत व्यक्ति को पुनर्जीवित कर दिया। पद 46, उनमें से कुछ फरीसियों के पास गए और उन्हें बताया कि यीशु ने क्या किया था। वास्तव में जैसा कि कहा जाता है, वे यीशु को फरीसियों के पास जाने के लिए मजबूर कर रहे थे। तब मुख्य याजकों और फरीसियों ने महासभा की एक सभा बुलाई। हम अध्याय 7 के अंत में महासभा की आखिरी बैठक को याद करते हैं। उन्होंने पूछा, हम क्या हासिल कर रहे हैं? ये शख्स कई तरह के संकेत कर रहा है। अगर हम उसे आगे बढ़ने देंगे तो हर कोई उस पर विश्वास करेगा। वे सोच रहे हैं कि यह एक लोकप्रिय विद्रोह की तरह होगा और इसमें रोमन शासन को अस्थिर करना शामिल होगा, और रोमी लोग आएंगे और वे हमारा मंदिर और हमारा राष्ट्र दोनों छीन लेंगे। दिलचस्प बात यह है कि अंततः 60 के दशक के मध्य से 70 ईपू तक, यानी इस समय से एक पीढ़ी दूर, यहूदी विद्रोह के दौरान यही हुआ था। तब हमारे पास बहुत ही राजनीतिक, हम कहें तो श्लोक 49 और उसके बाद कैफा की मैकियावेलियन सलाह भी है। कैफा ने, जो उस वर्ष का महायाजक था, बोलकर कहा, तू कुछ भी नहीं जानता। दूसरे शब्दों में, आप लोग वास्तव में इसे नहीं समझते हैं, है ना? तुम्हें इस बात का एहसास नहीं है कि तुम्हारे लिए यह बेहतर है कि एक आदमी लोगों के लिए मर जाए बजाय इसके कि पूरा राष्ट्र नष्ट हो जाए। कैफा के ये शब्द अक्सर व्याख्या शास्त्र की चर्चाओं में यह कहने के लिए उपयोग किए जाते हैं कि बाइबल अक्सर उससे बेहतर बोलती है जितना वह जानती है। कभी कभी इसे जनगणना पूर्ण कहा जाता है, और कैफा की सलाह बाइबल के वर्णनकर्ताओं और बाइबल के भविष्यवक्ताओं पर लागू होती है, खासकर पुराने नियम में। मैं इस बात की वैधता के बारे में निश्चित नहीं हूं या नहीं, कैफा जो कहता है उसका इस तरह उपयोग करना, लेकिन जॉन ने एक संपादकीय टिप्पणी में श्लोक 51 में तुरंत बताया कि उसने यह अपने आप नहीं कहा था, बल्कि यीशु में अपने अविश्वास के बावजूद कहा था, फिर भी वह उस वर्ष के महायाजक के रूप में भगवान के पदाधिकारियों में से एक के रूप में बोल रहा है। उसने भविष्यवाणी की, ओ उसने किया, क्या उसने किया? उन्होंने भविष्यवाणी की कि यीशु यहूदी राष्ट्र के लिए मरेंगे और न केवल उस राष्ट्र के लिए बल्कि ईश्वर के बिखरे हुए बच्चों को एक साथ लाने और उन्हें एक बनाने के लिए भी मरेंगे। इसके बाद श्लोक 52 उस बात पर वापस आता है जो यीशु ने अध्याय 10 में कहा था कि चरवाहा लोगों को अन्य भेड़शालाओं से एक में लाना चाहता था ताकि एक झुंड और एक चरवाहा हो। तो मैकियावेलियन, क्या हम इसे कहेंगे, कैफा की गंभीर सलाह यह थी कि उन्हें शेष राष्ट्र को बचाने के लिए यीशु को मारने की योजना बनाने की आवश्यकता थी, ताकि इस अर्थ में यीशु पूरे राष्ट्र के विकल्प के रूप में मर जाएं, क्योंकि उन्होंने कल्पना की थी यदि यीशु के आंदोलन को बड़ा होने दिया गया तो इससे राजनीतिक उथल पुथल मच जाएगी और रोमन आकर इसे कुचल देंगे और अधिक से अधिक लोग मरेंगे। वे मंदिर और बाकी सब कुछ खो देंगे। उन्होंने कैफा की सलाह मानी, आयत 53, इसलिए उस दिन से उन्होंने उसकी जान लेने की साजिश रची। निःसंदेह वे पहले से ही यीशु को गिरफ्तार करने, उसे खत्म करने की साजिश रच रहे थे, इसलिए अब जाहिर तौर पर उन्होंने ऐसा और भी अधिक करने की साजिश रची। श्लोक 54 कहता है कि यीशु अब यहूदिया के लोगों के बारे में सार्वजनिक रूप से बात नहीं करते थे। इसके बजाय वह जंगल के निकट एक क्षेत्र में एप्रैम नामक गांव में चला गया जहां वह अपने शिष्यों के साथ रहा। जैसे जॉर्डन के पार बैथनी कुछ हद तक अस्पष्ट जगह है, वैसे ही एप्रैम की यह जगह है जहां यीशु जाते हैं और उस खतरे से दूर कुछ समय बिताते हैं जिसका वह यरूशलेम में सामना कर रहे थे। तो कुछ लोगों के मन में एप्रैम की यह जगह बेथेन के पास यरूशलेम से 15 मील उत्तर पूर्व में एक्टेल नामक एक अरब गांव से पहचानी जाती है जो बाइबल आधारित बेथेल है। निःसंदेह एप्रैम का क्षेत्र भी था, एप्रैम का गोत्र जो पुराने नियम में भूमि के आवंटन से जुड़ा था, जो मुझे लगता है कि सामरिया की ओर से अधिक उत्तर की ओर होगा। किसी भी स्थिति में हम निश्चित रूप से निश्चित नहीं हैं कि यह कहां था। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि कहानी किस तरह से कही जा रही है। तो हमने अभी यहां क्या देखा है? शायद कथा की संरचना को देखने का एक तरीका यह है कि इसे एक तरह की चिस्टिक संरचना के रूप में देखा जाए जो वास्तव में लाजर को उठाने वाले यीशु के इर्द गिर्द केंद्रित है। कहानी की पृष्ठभूमि निश्चित रूप से जॉर्डन के पूर्व में वह संक्रमणकालीन समय है जो यीशु ने बिताया था, 10:40-42, जो हमें 1:28 में जॉन द बैप्टिस्ट के मंत्रालय के शुरुआती दिनों में वापस ले जाता है। इसलिए जब हम कहानी शुरू करते हैं तो यीशु गिरफ्तारी से बचने के लिए ट्रांसजॉर्डन चले गए हैं और जैसे ही हम लाजर की कहानी समाप्त करते हैं, यीशु अनिवार्य रूप से एक बार फिर हत्या की साजिश से बच रहे हैं, इस बार एप्रैम में एक अलग जगह पर। फिर हम मार्था के दुहक और उसके विश्वास की ओर बढ़ेंगे और उसकी तुलना फरीसियों के अविश्वास से करेंगे। मार्था कहती है, मुझे विश्वास है कि आप मसीहा हैं। स्पष्टतः फरीसियों को विश्वास नहीं था कि यीशु मसीहा थे। मार्था का दुहक और क्षमा करें, मार्था के ठीक बाद मैरी का दुहक और विश्वास शायद पुनरुत्थान या लाजर के पुनरुत्थान के बाद कुछ यहूदी दर्शकों के विश्वास से जुड़ा होगा। तो चाहे हम इन सभी समानताओं को जानबूझकर स्वीकार करें या नहीं, एक बात स्पष्ट है कि कहानी यीशु की गिरफ्तारी से बचने के साथ शुरू और समाप्त होती है। इसलिए समावेशन की साहित्यिक युक्ति, जिसे कभी कभी इसके लैटिन शब्द इनक्लूसियो भी कहा जाता है, यहां चल रही है। स्पष्ट रूप से कहानी लाजर के उत्थान पर केंद्रित है, चाहे ये बाकी चरण इस बिंदु के समान अच्छी तरह से मेल खाते हों या नहीं, यह एक बहस योग्य बिंदु है, लेकिन हम निश्चित रूप से सही रास्ते पर होंगे यदि हम ध्यान दें कि कहानी शुरू होती है और समाप्त होता है और यह लाजर के पुनरुत्थान पर केंद्रित है। यहाँ एक और मुद्दा यह है कि मुझे लगता है दिलचस्प वह तरीका है जिसमें बेथनी शब्द का उपयोग किया जाता है। हमारे पास यह शब्द है जॉर्डन के पार बेथनी और हमारे पास यरूशलेम के पास बेथनी है, तो हमारे पास दो अलग अलग बेथनी हैं, जिससे हम कुछ हद तक परिचित हैं, क्योंकि यह यरूशलेम के पास एक गांव है, जाहिर तौर पर यरूशलेम के ठीक पूर्व में। यह दूसरी जगह जॉर्डन के पार बेथनी एक ऐसी जगह है जिसके बारे में हम बिल्कुल निश्चित नहीं हैं। मृत सागर के पास ट्रांस जॉर्डन क्षेत्र के दक्षिणी छोर पर एक जगह है जिसकी परंपरा लगभग 5वीं शताब्दी से चली आ रही है, जो उस जगह की पहचान करती है जहां यीशु जा रहे थे और यहीं पर जॉन मूल रूप से बपतिस्मा दे रहे थे। मुझे लगता है कि कई लोगों की यह एक लोकप्रिय समझ है कि जॉन का मंत्रालय जॉर्डन नदी के दक्षिणी क्षेत्र में किया गया था। हालांकि ऐसे लोग भी हैं जो कभी कभी बेथानी शब्द के व्यंजनों के साथ व्युत्पत्ति संबंधी काम करके बेथानिया को बेथानिया नाम से जाने जाने वाले क्षेत्र से जोड़ना चाहते हैं, जो जॉर्डन नदी के ऊपर बेथनिया के गैलील क्षेत्र के दक्षिण पूर्व के एक क्षेत्र तक है। वहां यरमौक नदी है। चीजों को और अधिक जटिल बनाने के लिए जॉन 1:28 की कुछ पांडुलिपियां, जिनमें 10:40 का उल्लेख है, कुछ में बेथानी के बजाय बेथबारा शब्द का उपयोग किया गया है। तो यह इसका एक और हिस्सा है जिस पर विचार करने की आवश्यकता है। बेथनीज को देखते हैं जो जॉर्डन के पार है, जो पहचानने के लिए एक बहुत ही असामान्य और कठिन जगह है, तो हम खुद को भौगोलिक रूप से उस भूमि के क्षेत्र की याद दिलाते हैं जहां यीशु रहते थे, और इसलिए जहां आम तौर पर यह देखा जाता है कि जॉन बपतिस्मा दे रहा था, वह यहां दक्षिण में इस क्षेत्र में होगा। यह वह जगह है जहां प्रारंभिक मध्ययुगीन बीजांटिन काल से चली आ रही परंपरा जॉन के बपतिस्मा का पता लगाती है। हालांकि एक सिद्धांत है कि यह बेथनिया का यह क्षेत्र था, और मुझे लगता है कि आप इस क्षेत्र में कहीं कहीं यरमौक नदी की नक्काशीदार घाटी भी देख सकते हैं, जो आज भी अक्सर देखी जाती है। इसलिए जॉर्डन से परे बेथनी की तुलना में अधिक विशिष्ट मानचित्र को देखते हुए हम निश्चित नहीं हैं कि यह वास्तव में कहां होगा। यहां यरूशलेम है, लेकिन जॉर्डन से परे बेथनी या तो यहां कहीं ऊपर है, या जैसा कि मुझे लगता है कि धर्मग्रंथ की लोकप्रिय समझ में कम से कम दक्षिणी क्षेत्र में यह अधिक आम है। इसलिए जब हम भूमि को स्थलाकृतिक मानचित्रों के दृष्टिकोण से देखते हैं, एक उपग्रह दृष्टिकोण की तरह, तो यह शायद थोड़ा अधिक अंधेरा है, क्षमा करें। हम यहां ऊपर उत्तर पूर्वी या पूर्वी किनारे, वास्तव में गलील सागर के दक्षिण पूर्वी किनारे के बारे में बात कर रहे हैं। यह एक अच्छा नक्शा है क्योंकि यह आपको यहां की भूमि की रूपरेखा दिखाता है। बहुत अच्छे तरीके से हम यहां मेगिद्दो घाटी में कार्मेल रिज और एस्ड्रेलोन मैदान को देख सकते हैं। इसी दृष्टिकोण से आगे दक्षिण में हम यरूशलेम को यहीं देखते हैं, और फिर वह क्षेत्र जहां माना जाता है कि जॉन बपतिस्मा देता था, और हमारे यहां 5वीं शताब्दी की परंपरा है। लेकिन फिर उत्तर की ओर बढ़ती जॉर्डन रिफ्ट वैली को इस विशेष मानचित्र पर देखना काफी दिलचस्प है। यदि आप यरूशलेम के ठीक पूर्व में जॉर्डन नदी के पास हैं और आप पश्चिम में यरूशलेम की ओर देख रहे हैं, तो आप यह समझना शुरू कर देंगे कि आम तौर पर लोग यरूशलेम तक क्यों जाते हैं, क्योंकि जैसे ही आप जॉर्डन नदी के पास होते हैं, वहां मृत सागर आप कम से कम 1000 फीट, 1200 फीट या इसके आसपास हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कहां हैं, समुद्र तल से नीचे। यरूशलेम समुद्र तल से लगभग 2600, 2700 फीट ऊपर है। इसलिए जैसे ही आप ऊपर देखते हैं और पश्चिम की ओर देखते हैं, आप उस देश को देखते हैं जिसे यरूशलेम जाने के लिए आपको पार करना होगा, और यह काफी हद तक पूर्वसूचक है। आप लगभग एक टेलीफोटो लेंस लेते हैं और वही दृश्य लेते हैं और इस परिप्रेक्ष्य को देखते हैं, लगभग वही चीज जो हमने पहले देखी थी, थोड़े बड़े कोण से। मैं बिल्कुल निश्चित नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हम इस आखिरी चोटी के साथ यहाँ जैतून के पहाड़ तक देख रहे होंगे जो तस्वीर में मुश्किल से ही उभरता है। तो यदि वास्तव में जॉर्डन के पार बेथनी दक्षिणी स्थान होता तो यह उस प्रकार का क्षेत्र होता जिसे यीशु ने पार किया होता। भले ही वह उत्तरी स्थान पर था, बहुत संभव है कि वह जॉर्डन घाटी से नीचे आया होगा और फिर दाईं ओर मुड़कर पश्चिम की ओर मुड़कर इसी तरह यरूशलेम तक गया होगा। एक बार जब आप यरूशलेम में होते हैं और उस क्षेत्र को देखते हैं जिसे आपने अभी अभी कवर किया है, तो आप शायद अलजरिया अरब गांव के परिप्रेक्ष्य से देख रहे हैं, जिसे आज अक्सर बेथनी के साथ पहचाना जाता है, जो जैतून पर्वत के ठीक पूर्व में है। यदि हमारे प्रोजेक्टर पर हमारे पास थोड़ा बेहतर रिजोल्यूशन होता तो आप शायद यहाँ न केवल जॉर्डन घाटी को थोड़ा सा देख सकते थे, बल्कि जॉर्डन नदी के दूसरी ओर जॉर्डन के कुछ हिस्से भी देख सकते थे। मुझे लगता है कि यही यह छोटी सी छायादार चीज, यह आखिरी छोटी चोटी जिसे आप बादलों में मुश्किल से देख सकते हैं, वास्तव में यही क्षेत्र है। तो आप यह देखने के लिए लगभग 15 मील पूर्व की ओर देख रहे हैं कि जॉर्डन नदी कहाँ रही होगी। तो आज यह अरब गांव अलजरिया अच्छी तरह से जाना जाता है और आप भूमि का सामान्य विवरण देख सकते हैं और यह कैसे यरूशलेम के काफी करीब है। वास्तव में आज यह कुछ विवाद का स्थान है, दुर्भाग्य से, क्योंकि जिसे बाढ़ कहा जाता है, जो वास्तव में एक दीवार है, वह अरबों द्वारा इसराइलियों पर की गई हिंसा के कारण इस अरब गांव को पूर्वी यरूशलेम से काट रही है। उन्होंने दीवार बना ली है। मुझे दीवार देखने से नफरत है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। इस गांव में लाजर की एक पारंपरिक कब्र है, और यह प्रामाणिक है या नहीं, इसका अंदाजा किसी को नहीं है। आसपास पहली सदी की कब्रें हैं, इसलिए यह सोचना निश्चित रूप से अजीब नहीं है कि यह संभवतः वह स्थान हो सकता है। मैं इस बात से परिचित नहीं हूं कि पेशेवर पुरातत्वविदों ने इस साइट का मूल्यांकन किया है या नहीं। शायद उनके पास है और मैं इससे परिचित नहीं हूं। लेकिन आप आज वहां जा सकते हैं और इसे देख सकते हैं, और मूल रूप से यह निचला हिस्सा है जिसमें आप जाते हैं। आज भी वहां विभिन्न चर्च हैं जो इस स्थल की स्मृति में हैं। तो यहाँ एक योजनाबद्ध है जो आपको यह बताने का प्रयास करता है कि लाजर के लिए उस दिन किए गए दफन रीति रिवाजों का अभ्यास करना कैसा रहा होगा। हमें अध्याय 11 में बताया गया है कि वहाँ एक गुफा थी और दरवाजे के सामने एक पत्थर लुढ़का हुआ था। क्या गुफा एक प्राकृतिक गुफा थी या शायद अधिक संभावना है कि इसे मूल रूप से चट्टान से तराशा गया था, जैसा कि जोसेफ की कब्र के मामले में था जिसमें यीशु को बाद में इस सुसमाचार में दफनाया जाएगा। यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, लेकिन आपके पास कुछ इस तरह की व्यवस्था है जिसमें गुफा के मुख के समानांतर एक चैनल के साथ एक उद्घाटन है जिसमें एक पत्थर है जो कुछ प्रयास करने पर उस चैनल में आगे और पीछे लुढ़कता है। आमतौर पर दरवाजे के ठीक सामने उनके पास एक प्रकार का गड्ढा होता है जहां पत्थर नीचे आता है और वहीं आराम करता है, तेजी से बढ़ता है और गुरुत्वाकर्षण उसे उसी स्थान पर रोके रखता है। तो हो सकता है एक बार जब आप कब्र में जाएं, तो शवों को रखने के लिए दीवारों में लंबवत रूप से एक अलग कक्ष, एक पहला कक्ष, एक दूसरा कक्ष ताकें काटी गई होंगी। शवों के विघटित होने के बाद और जगह खाली थी एक प्रीमियम, शायद बाद में हड्डियों को बाहर निकाला जाएगा, कंकाल से अलग किया जाएगा और एक बॉक्स में रखा जाएगा। यदि लोग इतने अमीर होते कि कब्र खरीदने में सक्षम होते तो संभवतः वे अस्थियां रखने के लिए एक बक्सा खरीदने में भी सक्षम होते। कुछ मामलों में इतना नहीं, तो यहाँ केवल एक सामान्य विचार है कि कब्र कैसी दिखती होगी। यदि आप इसराइल के दौरे पर जाते हैं और आप माउंट कार्मेल पर हैं और आप वहाँ मेगिद्दो क्षेत्र में हैं और आप बस में बैठते हैं और वे आपको घाटी में मेगिद्दो की ओर ले जाते हैं, तो शायद आप यहीं तक पहुँच जाएंगे। जैसे ही आप उस स्थान पर जाते हैं, मुख्य राजमार्ग के ठीक किनारे रोलिंग स्टोन कब्र होती है। यहीं पर यह स्थित है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि प्राचीन समय में वे डिस्क को एक साथ रखने के लिए इस स्टील बैंड का उपयोग कर रहे थे जैसे किसी ने उस दिन से इसे वहां रखा हो। तो यह एक लुढ़कते पत्थर के मकबरे का एक उदाहरण मात्र है। इसराइल में उनमें से कई हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, जो संभवतः किसी न किसी तरह से लाजर की कब्र और उससे भी महत्वपूर्ण रूप से यीशु की कब्र के करीब हैं। रोलिंग स्टोन कब्रों के बारे में बाद में और अधिक जानकारी। जब हम अध्याय 19 पर पहुंचते हैं तो हमारे पास दिखाने के लिए कुछ और स्लाइड हैं। तो जॉन अध्याय 11 में कुछ व्याख्यात्मक मुद्दे, कुछ चीजें जो हमारे ध्यान को आकर्षित करती हैं और हमें इसके बारे में सोचने के लिए प्रेरित करती हैं। सुसमाचार में बाकी सभी चीजों के प्रकाश में जॉन 11 के साहित्यिक कार्य के दृष्टिकोण से कई लोग इसे चरम सातवें संकेत के रूप में संदर्भित करेंगे। मुझे लगता है कि मैंने यहाँ सस्पेंस शब्द की वर्तनी गलत लिखी है न? मुझे वहां सी के बजाय एस चाहिए। तो रहस्य स्वयं चमत्कार के तीन गुना निर्माण में एक प्रकार का निर्माण है। दूसरे शब्दों में हमारे पास यीशु और शिष्यों के बीच संवाद है। मूलतः यीशु यहाँ देरी कर रहे हैं और लाजर को जाने की अनुमति दे रहे हैं। फिर यीशु का मैरी से और फिर मार्था से संवाद होता है। मुझे लगता है कि मैं इसे पिछड़ा हुआ समझ गया हूँ। मार्था और फिर मैरी और फिर अंत में वह कब्र पर पहुंच जाता है और जिस तरह से वह चमत्कारिक ढंग से ठीक हो जाता है, क्षमा करें, उठाता है लाजर को, शायद यह भी अनुमान होता है कि जिस तरह से जुनून होने वाला है। आप एक दिलचस्प तुलना और उसके समानांतर कर सकते हैं। शिष्यों के साथ शुरुआती बातचीत में यीशु की संरक्षित गुप्त भाषा भी रहस्य पैदा करने और आपको आश्चर्यचकित करने में दिलचस्प है कि जब वह दिन के उजाले और रात के बारे में बात करते हैं तो क्या हो रहा है। पद 21 से 27 में यीशु ने मार्था के साथ जिस तरह से बातचीत की है वह जॉन के सुसमाचार के युगांत विज्ञान के प्रकाश में भी दिलचस्प है। हम पहले ही थोड़ी चर्चा कर चुके हैं, मुख्यतः अध्याय 5 के दृष्टिकोण से, जब यीशु ने कहा था कि समय आ रहा है, फिर भी अब वह समय है जब मृतक परमेश्वर के पुत्र की आवाज सुनते हैं। वास्तव में लोगों का यीशु पर विश्वास करना और उसकी आवाज सुनना उन्हें ईश्वर के साथ एक नए जीवन में लाता है और यह एक प्रकार का पुनरुत्थान है जिसके बारे में यीशु कहते हैं कि अंतिम दिन पुनरुत्थान की आशा है। इसलिए जब यीशु मार्था से बात कर रहे होते हैं तो वह अंतिम दिन के पुनरुत्थान में अपने विश्वास की पुष्टि करती है। फिर यीशु उससे उस संदर्भ में बात करते हैं जिसे हम वास्तविक युगांत शास्त्र कहते हैं, कि जो जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह एक अर्थ में कभी नहीं मरेगा, और यहां तक कि जो मर चुके हैं जो मुझ पर विश्वास करते हैं वे जीवित हैं। इसलिए इस एहसास और भविष्य के युगांत शास्त्र को कभी कभी उद्घाटन युगांत शास्त्र शीर्षक के तहत शामिल किया जाता है कि यह जॉन के सुसमाचार में और पूरे नए नियम में एक या दूसरा नहीं है, यह दोनों है। शायद यहाँ चमत्कार के बारे में सबसे गंभीर बात यह है कि इसके प्रति विरोधाभासी प्रतिक्रिया है, न केवल तत्काल दर्शकों द्वारा बल्कि कैफा और परिषद द्वारा भी जब वे इस पर विचार करते हैं। तो कल्पना कीजिए कि मरियम और मार्था और उनके दोस्तों के साथ वहाँ खड़े होकर यीशु को लाजर को उठाते हुए देखना, पत्थर को वापस लुढ़काना और उसके शरीर की दुर्गंध के साथ चेहरे पर लगभग तमाचा मारना कैसा होता, और फिर यीशु को कब्र से बुलाते हुए देखना और वास्तव में इसे अपनी आंखों के सामने प्रकट होते देखना। सोचो वो कैसा रहा होगा। जब आप उस पर गौर करेंगे तो यह देखना कठिन नहीं है कि श्लोक 45 यहाँ क्या कह रहा है। बहुत से यहूदी जो मरियम से मिलने आए थे और यीशु ने जो किया उसे देखा था, उनमें से कई ने उस पर विश्वास किया। आप उसे कैसे देख सकते थे और उस पर विश्वास नहीं कर सकते थे? कितनी अच्छी तरह से। पद 46 के अनुसार उनमें से कुछ जो वहां खड़े थे और जिन्होंने यह देखा, शायद कुछ जिन्होंने सोचा कि यीशु वास्तव में वही थे जो उन्होंने कहा था, उन्होंने जाकर फरीसियों को इसकी सूचना दी और उन्हें बताया कि क्या हुआ था। इसके कारण उन्हें एक सभा बुलानी पड़ी और यह कहने के बजाय, हमारे पास अनगिनत गवाह हैं, सिर्फ दो नहीं, सिर्फ तीन नहीं, हमारे पास अनगिनत गवाह हैं जो गवाही दे सकते हैं कि यीशु ने क्या किया है। तो अब आखिरकार समय आ गया है कि हम अपने होश में आएं और स्वीकार करें कि वह कौन है। कोई सोचेगा कि यह तर्कसंगत बात होगी जो घटित हुई होगी, लेकिन निःसंदेह ऐसा नहीं हुआ है। तो इस सब के प्रकाश में कैफा और उसकी कुछ रहस्यमय भविष्यवाणी को देखना आश्चर्यजनक है, जो मुझे लगता है कि मूलतः वही है जिसे राजनीति विज्ञान वास्तविक राजनीति कहेगा। वह काफी हद तक यही कह रहा है कि यह इसी तरह से होगा। दोस्तों, हमारे जीवन स्तर, हमारे रुतबे और हमारी स्थिति को बनाए रखने के लिए इस आदमी को नीचे जाना होगा ताकि हम खड़े रह सकें। शायद उसने वास्तव में सोचा था कि यीशु जिस आंदोलन को जन्म दे रहा था वह रोम के खिलाफ एक लोकप्रिय विद्रोह होगा और रोमनों को उनके अधीन कर देगा। शायद यही एकमात्र तरीका था जिससे वह यीशु को एक मसीहा के रूप में सोच सकता था। लेकिन जॉन यहाँ श्लोक 51 में एक दिलचस्प संपादकीय टिप्पणी करते हैं कि कैफा का यह कथन एक राजनीतिक रणनीति यथास्थिति बनाए रखने का एक तरीका था जिसे एक भविष्यवाणी के रूप में देखा जाता है। उन्होंने यह बात अपने आप नहीं कही, बल्कि एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में, उस वर्ष एक महायाजक के रूप में, उन्होंने एक भविष्यवक्ता के रूप में बात की और उन्होंने कहा कि यीशु यहूदी राष्ट्र के लिए मरेंगे, न केवल उस राष्ट्र के लिए बल्कि परमेश्वर के बिखरे हुए बच्चों को एक साथ लाने और उन्हें एक बनाने के लिए भी। यह जॉन के संपूर्ण सुसमाचार में शायद सबसे अप्रत्याशित स्रोत से यीशु के मंत्रालय की एक अद्भुत समझ है। यह व्यक्ति जो महायाजक था और जिसके पास खोने के लिए सबसे अधिक था, मुझे लगता है कि आप कह सकते हैं यदि यीशु सही थे और वे गलत थे, तो उसने यह टिप्पणी की जिसके कहने का उसका आशय यह था कि यही वह तरीका है जिससे हम यीशु को अपनी पीठ से हटा देंगे। लेकिन ईश्वर की व्यवस्था में ऐसा करते हुए भी वह ईश्वर को महिमा देता है और उस धर्मशास्त्र का वर्णन करता है जो वास्तव में सत्य है और वास्तव में क्या होने वाला है, इसका उस समय उसे एहसास भी नहीं हुआ था। तो जॉन के संपूर्ण सुसमाचार के प्रकाश में लाजर के पुनर्जीवित होने का क्या महत्व है? मुझे लगता है कि मैंने शायद इस वीडियो के दौरान भी इसे उत्थान के रूप में संदर्भित करके गलत बात की है, क्योंकि लाजर को अंत में भगवान के लोगों के अंतिम पुनरुत्थान के अर्थ में पुनर्जीवित नहीं किया गया था, क्योंकि उसका शरीर स्पष्ट रूप से एक ऐसा शरीर था जिसे एक बार मरना तय था। दोबारा इस समय उसे वह नहीं दिया गया जिसे पॉल ने महिमामय शरीर या स्वर्गीय शरीर कहा होगा। उसे पुनर्जीवित किया गया, वह पाला गया था, वह पूरी तरह से नए प्रकार के शरीर के साथ रूपांतरित होने के अर्थ में पुनर्जीवित नहीं हुआ था। इसलिए मेरे विचार से इस भावना को बढ़ाने की आवश्यकता है, इसे स्पष्ट और स्पष्ट किया जाना चाहिए। जहाँ तक जॉन के सुसमाचार में लाजर के पुनरुत्थान का संकेत दिया गया है, यह निश्चित रूप से जॉन का चरम संकेत है जो दर्शाता है कि यीशु कौन है, उसकी पहचान है और यीशु क्या करना चाहता है, यानी उसका मिशन। और हम इसे दो कारणों से कह सकते हैं, न केवल प्रकृति बल्कि संकेत का साहित्यिक स्थान भी। यह यीशु द्वारा किया गया सबसे आश्चर्यजनक कार्य है। उन्होंने पानी को शराब में बदलने से लेकर कुछ अद्भुत चीजें की हैं। लेकिन इससे इसका महत्व फीका पड़ जाता है, मृतकों में से किसी ऐसे व्यक्ति को जीवित करना जो चार दिनों से मृत था, जो विघटित होना शुरू हो गया था। ऐसे व्यक्ति को कब्र से बाहर निकालना निश्चित रूप से इस सुसमाचार में सबसे आश्चर्यजनक बात है। जाहिर है अपने साहित्यिक स्थान के कारण यह चरमोत्कर्ष पर भी है। यह आखिरी चमत्कार है, आखिरी संकेत है जो यीशु यरूशलेम में प्रवेश करने से पहले अपने शिष्यों के साथ अपना विदाई प्रवचन करने जा रहे हैं। कोई कह सकता है कि बाद में उसके पुनर्जीवित शरीर का प्रकट होना भी एक संकेत है, और शायद जॉन अध्याय 20 का अंत इसे इसी तरह लेता है। लेकिन जहां तक उच्चतम बिंदु तक बनने वाले संकेतों और उनके साहित्यिक स्थान की बात है, तो यह निश्चित रूप से चरम संकेत है। हम देख रहे हैं कि कैसे यीशु का अध्याय 2 से पहले ही विरोध किया गया था, जब उससे पूछा गया था कि उसने किस अधिकार से मंदिर को साफ किया था। उनका विरोध एक तरह से अध्याय 5 में केंद्रित था, और इस दौरान अध्याय 7 से बन रहा है। मुझे क्षमा करें, लेकिन यहां अध्याय 11 में मुझे लगता है कि यीशु का विरोध अपने चरम पर है, और कैफा की परिषद के आधार पर यीशु से छुटकारा पाने के लिए यीशु को फांसी देने के लिए परिषद का एक दृढ़ संकल्प है। श्लोक 53, उस दिन से उन्होंने उसकी जान लेने की साजिश रची। साहित्य के एक अंश के रूप में अध्याय 11 न केवल हमें इसे चरमोत्कर्ष पर लाता है, यह प्रक्रिया जो यीशु के विरोध के अध्याय 2 में शुरू हुई थी, बल्कि यह हमें यीशु के मंत्रालय के सार्वजनिक भाग से पाठकों के रूप में भी ले जाती है। उसका अंत, जिसे हम अगले अध्याय में पाएंगे, हमें विदाई प्रवचन और अध्याय 18 में शुरू होने वाली जुनून कथा में परिवर्तित कर देगा। तो यह कई मायनों में एक महत्वपूर्ण अध्याय है, एक ऐसा अध्याय जो ऐसा है हमें ला रहा है, हमें दिखा रहा है कि यीशु का सार्वजनिक मंत्रालय वास्तव में समाप्त हो रहा है। एक और अध्याय और यह खत्म हो जाएगा। लेकिन मुख्य रूप से मुझे लगता है कि हम यह कहना चाहेंगे कि यह अध्याय धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि जॉन की कहानी में लाजर का पुनरुत्थान निश्चित रूप से यीशु के पुनरुत्थान पर जोर देता है और उसकी आशा करता है। यीशु का इससे भी बड़ा पुनरुत्थान आएगा। यीशु ने कहा है, अहं इमी, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। यहां हमारे पास इसका एक अच्छा लैटिन संस्करण है, जो स्पष्ट रूप से आज बेथनी में सेंट लाजर के चर्च में वुलगेट से लिया गया है। मुझे यह चित्र कुछ रोचक लगा, क्योंकि चित्र में लाजर नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि कलाकार चाहता था कि हम इसमें देखें कि लाजर कब्र से बाहर देख रहा है और उसे देख रहा है जो उसे कब्र से बुला रहा है, और उसकी बहनें यीशु से विनती कर रही हैं और अपने भाई और भीड़ की देखभाल करने के लिए उसकी प्रशंसा कर रही हैं। रुके रहना, तो शायद यहां शोक मनाने वाले लोग हैं जो बहन के साथ विलाप कर रहे हैं, और यहां पर दर्शक खड़े हैं जिनमें से कुछ बगल में देख रहे हैं, शायद पहले से ही फरीसियों तक खबर पहुंचाने की साजिश रच रहे हैं। किसी भी घटना में मुझे इस कहानी को देखने का यह एक बहुत ही दिलचस्प तरीका लगता है, और यह हमें प्रभु पर केंद्रित करता है जिसकी महिमा करने के लिए यह मौजूद है। यह जॉन के सुसमाचार पर अपने शिक्षण में डॉक्टर डेविड टर्नर हैं। यह 17 है, यरूशलेम में तनावपूर्ण समय यीशु ने लाजर को उठाया, जॉन 11:1-57।